اللجن يا صاحب السماء اللجن.
من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير مبين. پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے، میں نے تتمیم تما دلانا، تینوں لفظ یاد ہو گئے، تینوں تہیں یاد ہو گئی، ٹھیک، تحدید، تبلیغ اور تتمیم. گھر والوں نے کہا یہ کیا تے سواد زاد کری، چپ رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا درس سن کے آنے کی. جس زمانے میں ہماری ایک دوست تجوید پڑھا رہی تھی، کہتی میرے شوہر کہتے رات میں نیند میں پتا تم کیا کرتی ہو، سواد. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، گھر میں بھی آپ سواد زاد یاد کرتی رہتی ہیں. اور ہم نے ایک مثال دی تھی آپ کو راؤنڈ ٹیبل کی کلاس کی. اچھا، یہ چیز بہت پریکٹیکلی بہت ہی زیادہ فائدے والی ہے. اس میں دو عنصر آ جاتے ہیں. اگر آپ بچوں کو اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا کر دے دیں، 10 سال پہلے یا 11 سال پہلے، ہمارے کچھ دوستوں نے مل کر ایک مدرسہ کھولا، اس میں انہوں نے ایک بچوں کو چارٹ بنا دیا تھا. اچھا، وہ چارٹ میں ہر چیز کے 10 تومان کے نمبر تھے، یعنی 1 روپے کا ایک نمبر تھا، 1 روپے کا ایک نمبر، ایک نمبر ایک کام کا ہے. اچھا، اس میں نابالغ افراد کا ایک چارٹ تھا، بالغ افراد کا ایک چارٹ تھا. جیسے آپ نے دیکھا نا وہ القائم کے کردار سازی کے چارٹ، لیکن وہ کردار سازی کا چارٹ میرے اور آپ کے لیے تو شاید پھر پریکٹیکل ہو. 12-13 سال کے کسی بچے والا نہیں ہے. 12-13 سال کے بچے کا چارٹ آپ کو خود بنانا پڑے گا. مثلاً روز ایک ایسا کام کرو جس سے تم امی کو خوش کرو. اچھا، یہ چارٹ کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں آتے جاتے گھر کے باقی افراد کی بھی نظر پڑے. یہاں پر میں ایک کتاب لے کر آئی ہوں، اگر ہو سکے تو یہ کتاب پڑھیے گا، میٹھے بول میں جادو ہے، ڈین کی. اس کی ڈین کی ساری کتابیں اچھی ہیں، انٹرسٹنگ ہیں، زندگی گزارنے کے دنیاوی اعتبار سے. اچھا، اس نے جو باتیں کہی ہیں ان سے ریلیٹڈ حدیثیں بھی بہت ہیں ہمارے پاس. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ ہمیں عقل لینے کے لیے ہم محتاج تھے اس ڈیل کارنیگی صاحب کے. لیکن اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے، کہا کہ ایک کارخانے کے مزدور انجن بنانے کا کام کرتے تھے. مزدور اتنے ٹھوس ٹائپ کے تھے کہ کام تھوڑا کرتے تھے، دہاڑیاں زیادہ لیتے تھے. جیسے وہ پاکستان میں بھی ہوتے نا، کنسٹرکشن شروع کروا دے، کبھی باتھ روم بنوائے گھر میں، پینٹ کروائے، دہاڑی میں مزدور لے آئے، بس وہ چائے پیتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اور کھاتے پیتے رہیں گے، کام تھوڑا کرتے ہیں دہاڑی زیادہ لے لیتے ہیں. اب یہاں پر بڑے حربے انہوں نے آزمائے. ایک دفعہ وہاں پر کوئی شواب صاحب تھے، پتہ نہیں کیا ان کا عجیب سا نام ہے، آئے. انہوں نے رات کے مزدوروں سے پوچھا تم لوگوں نے ابھی تک کتنے انجن بنائے، انہوں نے کہا 6. انہوں نے کوئلہ پکڑا، بڑا سا زمین پر 6 لکھ دیا. اچھا، اس 6 لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبح کی جب شفٹ چینج ہوئی، صبح کے مزدور آئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے 6؟ کہا رات میں مینیجر صاحب آئے تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا کتنے انجن بنائے، ہم نے کہا ہم نے 6 بنائے، وہ یہاں بڑا سا 6 لکھ دے ہیں. ان لوگوں نے سر توڑ کوشش کی 7 انجن بنائے تاکہ ہمارا فگر ان کے فگر سے زیادہ ہو. یہ ہے انسان کے اندر، یہ چیز ہے. اور اس چیز کا پازیٹیولی، اس چیز کا نیگیٹیولی، دونوں اعتبار سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. انسان کے، ہر انسان کے اندر یہ چیز مزاج کے اندر ہوتی ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ. بعض خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کو کوئی کپڑا پہنتے دیکھتی ہیں تو بے چین ہو جاتی ہے، میں بھی بنوا لوں. اچھا، ایسی ویسے دین کے حوالے سے ذرا کم ہی آتی ہے کہ انہوں نے ماہ مبارک میں 6 قرآن ختم کی تو میں 7 کر لوں، ایسے چکر میں عورتیں ذرا کم ہی آتی ہیں. لیکن پورے سارے دن کی دہاڑی کے مزدوروں نے لگا کر 7، اچھا رات کے مزدور آئے، انہوں نے دیکھا یہاں 7 لکھا ہوا، انہوں نے اور محنت کی 8. یعنی آخر تک جاتا ہے انسان، اور آخر تک جا سکتا ہے انسان، یہ چیز انسان کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کیسا چارٹ بنائیں، بالغ افراد کا یقینی سی بات ہے چارٹ الگ ہوگا، نابالغ افراد کا چارٹ الگ ہوگا. ایک ایسا کام جس سے ماں خوش ہو جائے، مثال کے طور پر، وہ پتہ ہے کیا، جس زمانے میں وہ چارٹ ملا کرتے تھے مدرسے سے بچوں کو، اور بچوں کو پتا ہوتا تھا ہر پوائنٹ کا 10 تومان ہے. اچھا، اس 10 تومان کی ویلیو نہیں ہوتی بعض اوقات، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر نے اتنے سارے سٹارز دے دیے، اتنا اپریشیٹ کر دیا، مدرسے کا سب سے اچھا بچہ ہے، آپ دیکھیے اس کا چارٹ دیکھیے، اس نے امام زمانہ کا صدقہ نکالا، اس نے زیارت فلانی پڑھی. وہ بچے ایک لگن کے ساتھ لگ جاتے ہیں.
आपने देखा कार रेसिंग गेम में बच्चे जब मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कोई कार रेसिंग रेसिंग गेम्स खेल होते हैं ना, तो मैंने कभी कभी महसूस किया कि वो सिर्फ आखिर में वो जो उन्हें टाइटल दिया जाता है उस टाइटल के चक्कर में आंखें जुची करे चले जा रहे। बेटा मुंह बंद कर लो। अम्मी क्या करती हैं आप? बीबी इसमें जरूर बोला होता है आपने मुंह बंद कर लो मक्खी चली जाएगी, जाती है तो जाने दे, इस वक्त सर भी जाता तो जाने दे। इन सारी चीजों के अंदर क्या होता है? मुकाबले की सी फिजा हो जाती है ना। तो इस मुकाबले की फिजा को मेरा और आपका काम, मैं नए से उस्ताद, यानी मेरे इल्म में ये बात कुछ अर्सा पहले आई थी कि बहुत सारे आप तालिबात में मोमिनात ऐसी है जो अपने इदारे में निजी पैमाने पर छोटे पैमाने पर एक मदरसा चला रही है। मैं भी वो 20 बच्चों का मदरसा हूँ, मैं भी वो 50 बच्चों का मदरसा हो, या 10 खवातीन को घर में जमा करके कोई दर्स दे रही है। अच्छी बात है ना, औरतों को सिखाने का यही फायदा होता है। सारे शहर में फैला देती है जाकर बात, एक बात सुनती है 10 जगह जाकर स्प्रेड करती है। तो ये इस पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा एक काम करती है, अच्छा ऐसी चीजों से एक जिसे कहें ना एप्रिसिएशन मिलती है बच्चों को। अब यह आपकी सोच होनी चाहिए कि आप कैसे चार्ट बनाएं। मैंने बड़े सालों तक वो बच्चों के चार्ट इसीलिए संभाल के रखे थे कि कराची के पास मदारिस में उन्हें राइज किया जाए बच्चों के पैमाने पे। अच्छा बच्चों को आपने लालच दे दिया टॉफी का, और बच्चे तो खैर टॉफी के लालच में आते हैं आजकल के बड़े बच्चे ना हंजार हैं। उनसे आप कहें कि आओ तुम्हें एक टी शर्ट दिला दें, तो कहेगा टी शर्ट नहीं दिला दें मेरा मोबाइल बदलवा दें। बच्चे पुराने जमाने के होते थे, कोई अच्छा काम पैसे 10 रुपए दे दिए खुश हो गया, 50 रुपए दे दिए बहुत खुश हो गया। अब कहते हैं 100 रुपए के कार्ड से क्या होता है? नहीं, आपके ख्याल में से कितनी देर को किसी से मोबाइल पे बातें कर सकते हैं? आप दे ही रही हैं तो 250 का, या इतने बच्चे वालों का अम्माओं को उल्लू बनाते हैं, उनसे कहो ना जाओ भाग कर मेरे पास वारिस का नेटवर्क है, जाओ जल्दी से जाकर मुझे 100 रुपए का कार्ड ला दो। तो कहेगा 50 आपके नंबर पे इजी लोड करवा दो, 50 अपने नंबर पे करवा लो। ये सिलसिले रहते हैं। अब इस सिलसिले को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है? बच्चों को आप एक हद तक तमा दे सकते हैं, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन एक मरहले पर जाकर आपकी तमा फ्लॉप हो जाती है, आप बुम्बस में खड़े हो जाते हैं। बुम्बस कहते हैं बंद गली, डेड एंड, बंद गली में खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे से कहा कि आप होमवर्क करो मैं आपको कैंडी दूंगी, उसने होमवर्क कर लिया आपने कैंडी दे, वो कैंडी का कचरा जमीन पर फेंकने लगा, आपने कहा जाओ जाकर इसे डस्टबिन में डालो मैं एक और इनाम दूंगी, वो डस्टबिन में डाल कर आएगा फिर आपसे एक इनाम मांगेगा फिर थोड़ी देर बाद आएगा, ये बच्चे का हाल उस जुलाहे का सा हो जाएगा। अरबी का एक मुहावरा है कि किसी जुलाहे ने 2 रकत नमाज पढ़ी और बैठ गया, इसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा इंतजार कर रहा हूँ। कहा किस चीज का? कहा वही इलाही का, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी अल्लाह वही क्यों नहीं नाजिल करता। तो वो बच्चों की कैफियत ऐसी हो जाती है, वो हर चीज में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें हर चीज के बदले में कुछ दिया जाए। और महसूस किया हमने बात बच्चे ऐसे, मम्मी मैंने यूं किया अब यूं किया जाए। बेटा कोई काम अपने लिए भी कर लो, दस्तरखान उठाए हैं तो 500 रुपए, फलाना काम किया है तो 10 रुपए, उन्होंने एक रेल लिस्ट ब्यूटी पार्लर की तरह लगाई हुई है और हर काम के बदले में वो पैसे तलब करेंगे। या मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप किसी 80 साल की खातून को पर्दे की तरफ माइल करना चाहें, उन्हें किस चीज का लालच देंगे? कफन के बैग का सामने पड़े वो पकड़ के ऐसा मारेंगे ना, वो शिकाने लगे कहेंगे भी तो मेरा दिल जवान है, ऐसी कैसी मरने की बातें ना करो मेरे सामने। यानी आप एक 80 साल की खातून को तमा नहीं दिला सकते, अगर दिलाना भी चाहिए तो किस चीज की दिलाएंगी? फर्ज करें एक खाती पीती साहिब हैसियत खातून है, बच्चों ने जेब खर्च लगाया हुआ है, शौहर की पेंशन इन्हें मिल रही है, कोई दुकान भी मरहूम छोड़ गए थे किराए के ऊपर, वो किराया भी नहीं आ रहा है, अब आप इन्हें क्या देंगे? आप पर्दा शुरू कर दें ताकि आपको हम हर रोज, अगर आप पूरे आस्तीने मोजे और मखना पहनकर बाहर निकलेंगी तो हम आपको 100 रुपया देंगे। कहीं कहीं ये दोनों हरबे फ्लॉप है, कहीं कहीं ये दोनों हरबे फ्लॉप है। या मिसाल के तौर पे किसी, अल्लाह ना करे आप मोमिनात के घर वाले बहुत काबिले इहतराम, खुदा ना खासा किसी मोमिना का शौहर दाढ़ी नहीं रखता, किस चीज से आप उसे लालच दिलाएंगे? तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगी, चलो दाढ़ी रख लो बहुत अच्छी लगेगी, चेहरे से नूर टपकेगा, ओकेगा हाँ जाकिर नाइक के टपक रहे जो मेरे टपकेगा, नहीं सी ऐसा ऐसा नहीं है। यानी देखिए तहदीद और तजमीन नॉर्मली इनिशियल स्टेजेस, इब्तदाई मरहले पर आप किसी को लालच दे सकती हैं, डरा बच्चा आपका 8 साल का आप उसे डरा सकती हैं, बाथरूम में बंद कर दूंगी, 18 साल के बच्चे को डरा सकती हैं, वो कहेगा अम्मी आप अंदर चले मैं बंद करके जा रहा हूँ, आप किस ख्वाब में किस ख्याल में। तीसरा और मौसर तरीन हरबा हमारे पास तबलीग का है, तीसरा और मौसर तरीन हरबा हमारे पास तबलीग का है। आज मैंने सोचा है बाकी 2 चीजें भी पढ़ डालूं और आपकी जहमत खत्म कर डालूं। मिसाल के तौर पर तबलीग के 2 तरीके हैं, تبلیغ کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تبلیغ زبانی, جسے زبانی کلامی کہنا ہوتا نا. اچھا, اس طریقے کو ڈسکریج بھی کیا گیا ہے بعض اعتبارات سے. روایت ہے ہمارے پاس معصوم کی کہ کونو دعات الناس بغیر اجرتے ہو, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ زبان سے نہیں, پیچھے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کل اول ماہ ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اللہ کرے بولے ماہ ہو جائے, ورنہ ذاکراؤں کا اسکیڈول درہم برہم ہو جائے گا. جمعے رات کی مسجد ہے, جمعے کو چلی جائیں گی, لیکن انشاءاللہ کل اول ماہ ہوگی, اللہ کرے ہو جائے, ٹھیک ہے. اب اول ماہ ہے, اٹھو اول ماہ کی نماز پڑھو, اول ماہ کا صدقہ دو, اول ماہ کا غسل کر لو اگر ہے تو, اول ماہ کا یہ کر لو وہ کر لو. آپ کہہ رہی ہیں بچے کیا کرتے ہیں آپ کے خیال میں, اے کتنی پیاری بات, مجھے ایک بچے نے مدرسے میں بتائی, کہا زہران کیا, آپ کہتے ہیں ایک کان سے نکال کر دوسرے کان سے, ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو, ہم پہلے کے اندر گھساتے ہی نہیں ہیں, ٹینشن فری, خلاص چلیں بول دیں. میں نے کہا تو کیا کرتی ہو, تو کہا آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, ہم ٹانگ نیچے کر کے انتظار کرتے کب اتریں گی کب اتریں گی کب اتریں گی. میں نے کہا جلال خالق, یہ بھی ہوتا ہے لیکن زبان سے کہنا. جیسے اچھا اس کا ایک حد تک فائدہ ہے, مثال کے طور پر قرآن کہتے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, فذکر انما انت مذکر, یاد دہانی دلواؤ تمہارا خدا حبیب سے اپنے پیامبر سے مخاطب ہے, یاد دہانی دلواؤ, یاد دہانی میں مومنین کے لیے نفع ہے, یاد دہانی کرواؤ, بے شک تم یاد دہانی ریمائنڈر دینے والے ہو. فرض کریں شاید میرے یاد مجھے یاد بھی نہیں رہتا, اول ماہ ہے اور میں فارغ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوں, آپ میں سے کسی کا میسج آئے پلیز آفر اول ماہ کی نماز, تو انسان کہتا ہے چلو دو رکعت نماز ہی تو ہے, فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی یاد دہانیاں ہماری زندگی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی مثال کے طور پر, بہت ہی ویسے تو ذاتی مثال دینی نہیں چاہیے, لیکن جس زمانے میں ہم ایران میں رہتے تھے تو ہر گلی کے باہر ایک صدقے کا باکس لگا ہوتا تھا, کمیتے امداد امام کمینی والوں کا. اچھا یہ صدقے کا باکس کیا ہے, یہ صدقے کا باکس آپ کو یاد دلاتا ہے آپ نے گاڑی والے کو 40 سومان کرایہ دیا, اس نے آپ کو 50 سومان کے نوٹ سے 10 سومان کا کھلا دے دیا, آپ کے ہاتھ میں 10 سومان کا سکہ ہے, سامنے صدقے کا ڈبا ہے, آپ کا ہاتھ خود بخود جائے گا. یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. یا ٹول پلازاز پہ جہاں پر آپ کو گاڑی روکنی ہے اور آپ کو وہ ٹیکس پے کرنا ہے, جیسے آپ ٹیکس پے کریں گے بہت بڑا سا باکس لگا ہے صدقے موجب شادی دلہا میں گردد, صدقہ دل کی ٹھنڈک اور خوشی کا سبب بنتا ہے. آپ کی جیب سے آپ نے وہ جو ٹول پلازا والے نے آپ کو 150 واپس کیا, آپ کہیں گے اس کو صدقے کے ڈبے میں ڈال دو. یہ چیزیں کیا اثر انداز نہیں ہوتی, یہ چیزیں ہماری عملی زندگی میں بہت اثر انداز ہیں. ہمارا کسی کو کہہ دینا, ہمارا بعض اوقات کسی سے کہہ دینا, اچھا یہ زبانی کلام ہے, یہ ایک حد تک انسان پر اثر انداز ہے. دوسرا تبلیغ کا ذریعہ ہے تبلیغ عملی. اب آپ اردو زبان ہیں, میری کیا مجال میں آپ کو ٹائٹلز بنا کر دوں, لیکن آپ اسے ایک اچھا سا عنوان دیں, زبانی تبلیغ عملی تبلیغ. اب میں نے یہاں پر زبانی اور عملی دونوں کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں بنا کر رکھی ہیں. مثال کے طور پر دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے. پہلے میں آپ کو دین کی مثال دیتی ہوں, دین کس طرح سے ہم زبانی, اچھا زبانی میں آپ کو بتاؤں, زبانی کہیں کہ انسان مار کھا جاتا ہے. پتہ کیوں مار کھا جاتا ہے؟ قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے. ہم نے مدارس میں آنے والی بعض مومنات کو, بعض مدرسات کو, بعض ذاکراؤں کو دیکھا, ممبر سے زینت زینت زینت, حرام ہے حرام ہے حرام ہے. ہمیں کسی شادی میں ملی, ہم نے دیکھا کوٹ پہنا ہوا بھرا ہوا. اب یہ ممبر پہ بیٹھیں گے نا تو ہمارے ذہن میں وہ جھلملاتا ہوا کوٹ آ جائے گا. آپ لوگوں نے عقائد پڑھے ہوں گے, یقینی بات ہے آپ سینئر گروپ ہیں. نبی اور امام کو معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ اسی لیے تاکہ کوئی پلٹ کرنا کہہ کہ خود تو یہ کرتے ہیں, ہمیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر یعنی ایسی دسیوں مثالیں, ابھی آگے رجب کی کنڈوں کی نیاز اور شادیاں وادیاں, آپ کو سب کا دین پتہ چل جائے گا, احساس ہو جائے گا کہ کون دین میں زبان کے اعتبار سے کتنے پانی میں اور کون عملی اعتبار سے. مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں نے کسی ذاکرہ بہن کو دیکھا, آستینیں نہیں پہنی ہوئی تھیں, وہ رکشہ میں بیٹھ رہی تھی, جیسے نظر پڑی اتری, معانقہ ہوا مسافیا ہوا, تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے دکھ کی ایک لہر بھی دل میں اٹھی کہ اگر یہ اس طرح سے یہ سوچیں کہ یہ تو پوری ہے, یہ پوری نہیں ہے, اس کے اوپر یہ بھی ہے تو وہ پورا نہیں ہے. آپ کو اپنے حجاب کا جتنا آپ کو کانشیس ہونا چاہیے اتنا لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے نا. جو اپنے نفس کو لوگوں کے لیے رہنما بنانا چاہتا ہے, فجبدہ بنفس سے اسے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ لینا پڑے گا. जुबान से कह देना, वो बकौल अल्लामा इकबाल के जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपको कहूँ हराम निगाह हराम निगाह हराम निगाह, आप देखिए मैं खुद किसी को बड़ा मुंह करके देख लूँ और फिर मेरा माथा किसी चीज से टकरा जाता है और मेरे होश ठिकाने लग जाते हैं। जुबानी कलामी, लेकिन अगर हम अमली तबलीग की मिसाल करते हैं दुनिया के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से आप देखिए आपके ख्याल में ये जो मीडिया है किस तेजी से हमारे मिजाजों पर असरअंदाज हो रहा है। बच्चे मैगी मांगते हैं, बच्चे सीरियल मांगते हैं, बच्चे जो रात का सालन और सुबह की रोटी नाश्ते में खाने वाले थे वो कॉर्नफ्लेक्स की बातें करते हैं। मीडिया ने आपको ये सोच दी, आपका पेट भरे ना भरे आपको कांटे और चमची से खाना है जैसे सब खा रहे हैं, और अगर मैं रोटी से ये चीज खाऊंगी मतलब मेरे बाल लोगों ने कहा पिज्जा से घुल रहे हैं, अरे हाथ में उठाओ कुछ कुछ करके खा लो, नहीं वो जैसे खा रहे स्टाइल से हम भी खाएंगे। मीडिया असरअंदाज होता है चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो। मीडिया का एक काम क्या है, आपके अंदर तलब काजिब को पैदा कर देना। मुश्किल लफ्ज है ना, कोई बात नहीं, जिन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया ना तो ज्यादा मुश्किल लग रहे होंगे, कहेंगे काश तलब काजिब की बजाय कोई रोटी सालन टाइप की। वो उन्होंने हराम निगाह में डॉक्टर आबिद ने एक मिसाल दी ना, भूखे से पूछा इश्क की कोई बात की तो कहा खाने का टाइम हुआ है, वो वाली बात है। आप लोगों का भी मेरी हमदर्दी आपके साथ है, मैं खाना खा कर आई हूँ, भरे पेट के होने के बावजूद मेरी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन हकीकतन आप बैठी हैं टीवी पर कोई ऐसी चीज देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी इसके बगैर नागुजीर है। मीडिया ने हमारे सामने इतना ज्यादा वो चीज पैदा की और हमारे सेल्फ कंट्रोल को खत्म करने के अंदर होम डिलीवरीज का एक किरदार था। मैंने सोचा अच्छा, स्पेशली जो 24 आवर्स की होम डिलीवरीज देते हैं बास फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, बच्चे कंबाइंड स्टडी के नाम पर जमा हैं, बच्चे जमा हैं या घर के बड़े भी जमा हैं किसी जगह पर, 3 बजे कुछ खाने का दिन हुआ तो कराची के हालात तो अब ऐसे नहीं रहना कि आप गाड़ी में लदे और चले जाएं, पापोश चले जाएं और खुशपोश चले जाएं, कहीं में भी चले जाएं, फूड स्ट्रीट चले जाएं। अब आपको याद आता है बच्चे कहते हैं अम्मा फुलानी जगह का नंबर दो, होम डिलीवरी देते हैं पिज्जा की बर्गर की फ्रेंच फ्राइज, उनके फ्रेंच फ्राइज देखे अपने कभी देखे कभी आपसे ऐसे फ्रेंड बेटा वो 150 रुपए में इतने से देते हैं, हम 150 रुपए में टब्बर को फ्रेंच फ्राइज गिरा देते हैं, तो स्टैंडर्ड में फर्क तो आ जाएगा ना, अंडरस्टूड सी बात है फर्क तो आ ही जाएगा। लेकिन जैसे ही सोचा थिंक डन, सोचो हो जाए, मजे की बात है बरअक्स इस्लाम की, इस्लाम आपका सेल्फ कंट्रोल कमाल तक लेकर जाता है। मगरिब की अजान हो चुकी है, रोजा खुल चुका है, मुस्तहब ये है बास सूरतों के अलावा के पहले नमाज फिर खाना, बास सूरतों के अलावा वो सूरतें आप मुझसे बेहतर जानती हैं। ये तलब है काजिब, किसी भी चीज को देखते इंसान कहता है इसके बगैर जिंदगी क्या है, अच्छा इससे पहले हम इसके बगैर जिंदगी गुजार रहे थे मरे क्यों नहीं, ऐसे हो गए हम, हमें ऐसा कर दिया गया। यानी एक सेमिनार हुआ था दुबई में इसी मौजू पर, हमारे आलिम भाई गए थे बरादर बुजुर्गवार, उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी, कहा ये करोड़ों रुपए लगाते हैं इस चीज पर ताकि आपके जहन को सिर्फ इतना जकड़ सके, आपने देखा फुलां साहिबा ने शैंपू को उससे धोया बालों को, ऐसे एंटी हेयर फॉल हुए कि वो ट्रक बालों से खींच रही है, आपके भी दिल में एक लहर जरूर उठेगी, ट्राई तो करके देखो। आपने देखा पिज्जा से चीज लटक रहा है आपके भी मुंह में पानी आने लगे, ट्राई तो करके देखो। आपने भी देखा लॉन की सूट एक स्वीट मुंह में रखे एसी की ठंडक आ जाएगी, अब वो मजे की बात है रेलवे स्टेशन में कोई बैठा हो और ऐसा कोई इश्तेहार देख रहा हो तो दिल में होता है मैं भी मुंह में रख के तो देखूं शायद मुझे भी कोई कूलिंग मिल जाए 100 मिनट की। ये चीजें अच्छा, अगर आपकी सेल्फ कंट्रोल ज्यादा है तो आप ट्राई, वरना आप कहेंगे ये चीज के बगैर जिंदगी नागुजीर है। तलब काजिब, भरे पेट पर खाना कितना ममनू था रिवायतों में, इन्होंने इतना सब जंक फूड वगैरह को कर दिया कि आप बच्चे खाना खाते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं क्या खाने के लिए, बच्चे तो बच्चे बच्चियां बड़ी उम्र की खवातीन भी ऐसी अच्छी नादरी जिन्हें खाती पीती बैग खोलती है बड़ा सा बस्ता लाई क्यों मदरसे, अगर डॉक्टर अलीम बैठे और पर्दा हाइल है तो चलो पीछे कुछ 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 चलता रहेगा सेशन, कितनी अय्याशी, हमने खुद ऐसे सेशन भुगते हुए हैं, उस्ताद पर्दे के पीछे आप जो मर्जी खा लो बादाम पिस्ते बस्ते से निकाल कर बिस्किट टॉफी चॉकलेट सब बहुत कुछ किया जा सकता ना। आपने दुआ नहीं कि मेरी जगह भी कोई ऐसे सर होते जिनके और आपके दरमियान पर्दा होता, चाय का कप भी आप पीती मुझे कोई खबर थोड़ी होती। तलब काजिब झूठी तलब पैदा कर देना इस चीज के बगैर रह ही नहीं सकता। और बरअक्स इस्लाम आपकी चीज को आखिर तक खत्म करना चाहते हैं हर एतबार से, हर एतबार से। अब मेरा मौजू चूंकि ये नहीं है, मीडिया नहीं है और उसके हथकंडे नहीं है, लेकिन बहरहाल इस चीज को जब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, ये खुद एक तबलीग का तरीका है, किसी चीज का इतना ढंडोरा पीटो कि आपको सच लगने लग जाए, सच लगने लग जाए। मैं आपसे कहूँ 53 में आपको कूलिंग दे रहा है, टोपी सर पे पहनी हुई, अकल से अंधे तुम पंखा चला के बगैर टोपी के बैठ जाओ, लोगों को बिजली मुयसर नहीं है, लेकिन ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखा कर क्या कर रही है? आप कभी नहीं चाहेगा एक आज एक स्प्लिट हो घर में और स्प्लिट का रिमोट हो हाथ में और बिजली कभी ना जाती हो और आप स्प्लिट चलाएं और उसके बाद आप भी टोपी पहनकर बैठ जाए? हैं ऐसे लोग हमारे मुआशरे में, है ऐसी सोच हमारे मुआशरे में, बच्चों को ऐसी सोच दी जा रही है कि बच्चे अब वो दिन ब दिन पैंपर होते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये एक काम है तबलीग का। अच्छा, जब वो मुझे शैम्पू बदलने पर मजबूर कर सकती है, मुझे दाल के अंदर वो क्या क्यूब आती ना कनौर वालों की, और मैंने पिछले दिनों किसी मोमिना से पूछा फर्क पड़ता है इसे दाल के ड्रेस पर, कहती है कोई भी, मैंने कहा वो तो ऐसे लगाते हैं जैसे आप दाल नहीं चिकन के लेग पीस खा रहे हैं, कहा सिर्फ झांसा है, मैंने कहा झांसा होने के बावजूद हम उसमें आ जाते ना, दाल पकाए तो फिर वो पीछे रेसिपियां दी होती है, ऐसी शक्लें दी होती है, बच्चे भी कभी कभी कहते हैं अम्मी ऐसी दाल तो आपने कभी नहीं पकाई, ऐसी फलानी चीज तो आपने कभी नहीं बनाई, लेकिन ये चीज है इंसान के अंदर, ये चीज पैदा कर लेना। हम दीन के हवाले से किसी के अंदर ऐसी तड़प पैदा कर सके, अपनी औलाद में, बहन भाइयों में, आयजा में, अकरबा में, किसी पड़ोसी में, किसी दोस्त में, नहीं, अमली तबलीग दीन के हवाले से पहली मिसाल, अमली प्रैक्टिकली करके दिखा देना। सब बैठ कर बातें कर रहे हैं, इस सब में कोई भी हो सकता है, सहेलियां बैठी हुई हैं मदरसे में, कुछ बच्चियां शायद मुमकिन है थोड़ा पहले भी आ जाती हूँ, और जब घर से निकलती हूँ तो नमाज का टाइम ना हुआ हो, यहाँ पहुंची हम सोचा, पहले तो हम सोचते पैर लंबे करके इससे भी बातें कर लो, उससे भी बातें कर लो, उससे भी बातें कर लो, अल्लाह से घर जाके कर लेंगे, जब थक थक हार जाएंगे ना तब चार रकत ऐसी नमाज पढ़ेंगे, दूसरी रकत में खड़े खड़े तशहुद पढ़े याद आएंगे तो बैठ कर पढ़ना था, ऐसी नमाज है। हालांकि सब बैठ कर बातें कर रहे हैं, आप बीच में से उठ जाए क्यों, अजान हो गई। मैंने पिछले संडे आपको कहा था ना, आपके घर में शादी है, आप 500 को कार्ड देते हैं, 100 को कार्ड देते हैं, जितना आपका बड़ा सर्कल और जितनी बड़ी फैमिली है उसी एतबार से कार्ड देते हैं, सब आते नहीं है, आता सिर्फ वही है जिसको आपसे प्यार होता है या जिसने आपका उधार वापस करना होता है। ये सोच भी हमारे माशरे में, वो दे गई थी बच्चे की पैदाइश पर, अब उनके यहाँ बेटे की शादी है तो हमने कुछ देकर दिया। अल्लाह की अजान की आवाज हर जगह गूंजती है। अभी मैंने एक आर्टिकल पता नहीं कौन से इस्लामिक मैगजीन में पढ़ी थी कि पूरी दुनिया में हर वक्त गूंजती रहती है, अफगानिस्तान में इतने बजे अजान का टाइम होता है तो सोमालिया में इतने बजे होता है और कतर में इतने बजे होता है। ये सारी बातें आप छोड़ें, जब कहा मुअज्जिन ने हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल, आप उठ गए। जनाब आयशा की रिवायत कहती है कि पैगंबर जब हमारे बीवियों के साथ बैठे हुए होते थे, क्या जब हम बीवियों के दरमियान बैठे होते थे, जैसे ही नमाज का वक्त होता था उठकर ऐसे चल जाते थे जैसे हम सारे के सारे अजनबी हैं। ये पैगंबर की बॉडी लैंग्वेज थी। अजान का वक्त हो गया, मैं अब आपको नहीं जानती, आप कौन है, मैं जा रही हूँ अपने रब के साथ राजो नियाज करने में, सब कुछ छोड़ दिया जाए। अब मिसालें इतनी नामुनासिब है, इसके बाद में डंडे पिटने चाहिए, लेकिन मैंने बाजू का देखा है जिनकी मंगनियां हुई होती, जिनका निकाह पड़ा गया होता, अभी रुख्सती नहीं हुई, रुख्सती के बाद तो बंदा मियाँ के फोन को ही बोलते ही रहते हैं, पूछते रहते हैं, दूध आने वाले, डबल रोटी आने वाली, अंडे आने वाले, इनको और कोई काम नहीं है, लेकिन निकाह हुआ मैं भी रुख्सती नहीं हुई, फोन पर बेल बजी, ओह खुदाया उठाकर गायब, किसी की होश नहीं है, अभी सारे से चाय का मांग रहे थे कहाँ गई, अरे वो फोन आ गया उसका, चली गई होगी बावर्ची खाने में दरवाजे के पीछे बैठ के लगी होगी, इतनी आहिस्ता बात करती है, 10 दफा सुनने की कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी कैफियत, यानी ऐसी कैफियत क्यों है? पैगंबर अजान की आवाज सुनने के बाद बकौल जनाबे आयशा की रिवायत के ऐसे हो जाते थे गोया हमें पहचानते ही नहीं। हम भी ऐसा कर सकते हैं, अलबत्ता अलबत्ता एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे दरमियान ऐसी जज्बाती मोमिनात की कमी नहीं है जिन्हें अजान की सेंसिटिविटी मजलिस के दौरान जाना चाहती। मेरा पहला सवाल 12:23 पे, फॉर एग्जाम्पल अजान हो रही है, इस वक्त शायद 36 पे हो रही है, ठीक है, कितने बजे हो रही है, 34 पर, ठीक है 34 पर, 11:50 पर मजलिस शुरू हुई है, इसका मतलब ये है कि ये 11:50 की 11:40 पे खत्म होगी, 50 मिनट तो जाकिरा बेचारी मुरव्वत में पड़ेगी ना। मैं जब शुरू शुरू में कराची आई थी ना, बाद 35 मिनट की मजलिस पड़ती थी, साहिब खाना नाराज हो जाते, फिर मेरा ख्याल उनका मुझे तबरुक शबरुक देने का भी दिल नहीं चाहता होगा कि ये क्या उतरी और उतर गई। मैं तो क्या चाहती हूँ, आप लोग ही जो उतारे नीचे से पकड़ के, नहीं मैं खुद इज्जत से उतर जाऊँ, यही भले मानसी है। आपको पता चल गया है 11:50 पर खुतबे का आगाज हो रहा है, आपको कौन कह रहा है ऐसा बैठेंगी भी जाकिरा के घुटने से लगकर, और जैसे ही अजान की आवाज आएगी मोबाइल देख रही हैं, टाइम रिस्ट वॉच देख रही हैं, सफों को चीरती हुई, वो ये कौन सा तरीका है? इस मजलिस की हुरमत नहीं है? कभी मैंने ऐसी मोमिनात, अच्छा मैं ऐसी बात मोमिनात को जाती तौर पे जानती हूँ, कभी नहीं देखा तारिक रोड पर मुसल्ला बिछा के खड़ी अल्लाह अकबर, नहीं जाता हूँ मैं वो सऊदी वाला को, हाँ देखे हर जगह सलाद 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 का सब कुछ बंद, चलो काबा इधर है नमाज इधर पढ़ रहे, ऐसी सिचुएशन हज के मौके पर ऐसी नमाज देंगे जाते, काबा उधर है भैया, काबा उधर है, इधर किधर पड़े हो, बस असला असला चलो। मैं एक दफा वो बच्ची का दूध के लिए पानी उससे मिनरल मांगी थी, असलाद मैं चार बच्चा बेचारा बेचारा रो रहा है, असलाद कह के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन ये मोमिनात का गिरोह जो, अब मैं क्या कहूँ, मोमिनात हैं एहतराम जरूरी, आजादार हैं उससे भी ज्यादा एहतराम जरूरी, लेकिन ये क्या नॉर्मल एटीट्यूड है? आपको अजान पढ़नी है, इतनी पंक्चुअलिटी दिखानी, शादी हॉल में भी ऐसी नमाज नहीं पढ़ती हूँ, ब्यूटी पार्लर में भी नहीं, दो बाल निकल गए छड़ सबर 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 सलाह नहीं, वहां पर भी नहीं, मजलिस में इनकी हसासियत ज्यादा उभर जाती है, और फिर अगर जरा सी साहिब खाना के साथ टसल चल रही हो, जाकिरा ना पसंदीदा हो, तो चार को कहेंगे ये कौन सा तरीका है, इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानियां अपनी मर्जी से वो कर देंगे, मस्जिद दरहम बरहम हो जाएगी। आपके ख्याल में ये रवैया काबिल सताइश है माशरे में या नहीं है? सो रहे आप लोग, है ना ये रवैया? मुझे समझ नहीं आता आपको नमाज इतनी बुखार है अव्वल वक्त पढ़ने का, वहां बैठे जहां से आपके हिलने का। मैं जाती तौर पर एक जाकिरा नाचीज से जाकिरा होने के नाते बाद मोमिनात को जानती हूँ, शुगर की पेशेंट है और उन्हें रफे हाजत के लिए बार बार जाना पड़ता है, हमेशा मस्जिद में ऐसी जगह पे बैठती है जहां से किसी के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना। जब वो अपनी शुगर के प्रॉब्लम का ख्याल रख सकती है और ऐसी जगह पर बैठ सकती है, और अगर आपको भी इतना जज्बाती बुखार है तो आप भी ऐसी जगह पर बैठे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंट्रोल, हमें इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए कि नमाज और मजलिस ना टकराए। लेकिन ये शहर है कराची है, कभी ट्रैफिक का मसला, कभी हालात की खराबी, कभी जाकिरा की देर सवेर, कभी आपके इलाके में हालात ठीक है, जाकिरा के इलाके में गोलियां चल रही हैं, जब तक आपने दूसरे रेंज की नमाज का वक्त हो गया। लेकिन बहरहाल अमली तबलीग का ये तरीका नहीं है, अभी मैं आपको कह रही हूँ नमाज का वक्त हुआ है और आप उठकर चले जाए। मोमिन का काम क्या है? सही वक्त पे सही डिसीजन ले, वही शरीयत जो आपको कहती है ना, पहले नमाज फिर इफ्तार, बात सूरतों में आपको कहती है पहले इफ्तार फिर नमाज, जब आपका इंतजार किया जा रहा है। और हमने माशाल्लाह देखे हैं, अगर कभी फैमिली में बड़े पैमाने पर बहन भाइयों की सबके एक जगह इफ्तारी हो रही थी, वो बच्चे जो बालिग नहीं है उन्होंने रोजे रखे ना, तो वो बस खुशबुएं सूंघ सूंघ के अंदाजे लगा रहे थे, चाची ताई माँ फुफी क्या बना रही है। अब ऐसे बच्चों से कहा जाए नमाज तो आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, अभी बेटा 12 घंटे 13 घंटे सफर किया, थोड़ा सा 5 मिनट की नमाज, बस नमाज ही लेके बैठी थी, का एहसास नहीं है मेरा भूख से क्या हाल हो रहा है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा, जनाजा भी साथ पढ़वा दीजिएगा, ऐसी कैफियत होती है नाउज बिल्लाह मिजानी सुम्मा नाउज बिल्लाह मिजानी। लेकिन ये एक अमली तबलीग है, उठकर चले जाना। मसलन एक रिवायत में आपको सिद्दीक़े कुबरा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहजादी के बारे में मिलते कि घर में मदीने की कुछ खवातीन जमा थी, किसी ने गिबत शुरू की, शहजादी उठकर चली गई, शहजादी उठकर चली गई। ये अमली तबलीग है, मैं इस जगह पर नहीं बैठ सकती या मैं इस वक्त यूं नहीं कर सकती। अलबत्ता इसके अंदर मौका शनासी मुहिम है, इसके अंदर खुदा की रिजा मुहिम है। कभी कभी पता है शैतान क्या करता है, आपको इस तरह से कान नहीं पकड़ता, इधर से पकड़ लेता, आपके अंदर ये चीज इतनी भर देता है। फर्ज करें घर वाले सारे किसी बहुत ही सेंसिटिव इशू के लिए जमा हुए हैं, नन के रिश्ते का मामला है, सारे के सारे आपको बहू होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से बिठाया गया, नमाज का वक्त हो गया, मैं जा रही इत्तकु फरासत रुमूई वहुवा यंजरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की समझदारी और होशियारी से डरो, वो खुदा के नूर से देखता है, उसे पता है कौन सा काम कब करना है। और बहरहाल हमारे सामने सैकड़ों मिसालें भी हैं। या दूसरी मिसाल आपको दूं, कई ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां नामहरम की आमद का इम्कान है, शादियां, मिलाद, अभी रजब में कूनों की मियाद है, कितने मजे का काम होते हैं, जाए जाके पूड़ियां खाएं और छोले खाएं और खीर खाएं और फिर तबसरे करें। अब लोगों ने उसका भी ट्रेंड बदल दिया, बारबेक्यू शारबेक्यू टाइप की चीजें रख लेते हैं, अब दिल जलाते रहते हैं दूसरे अफराद का। आपको पता है कि यहाँ पर नामहरम आ सकता है, एहतमाल उखलाई है, और कुछ नहीं तो घर के लौंडे लपाड़े फिरते रहते हैं, सबको महरम समझ के झांकते रहते हैं कौन कैसी लग रही है, ताकि सबके जाने के बाद तबसरे कर सके। अम्मी आपकी सहेली कैसे कपड़े पहन कर आ जाती है, कोई सेंस नहीं, कलर सेंस नहीं, किसी दफा भी ऑरेंज लिपस्टिक लगा कर आएंगे, और आज तो पर्पल लगा कर क्या लग रही थी, क्यों इन्हें कोई शीशा नहीं दिखा था। घर के लड़के घूम फिर रहे हैं, हमने आस्तीनें उतार कर साइड पे रखी, मखने को उठाया, दुपट्टा लपेटा और समझा कि हमारा पर्दा अमली तबलीग किया है। मैं आपसे कह रही हूँ उतार दें, अगर आपका इत्मीनान नहीं आपके नहीं उतारूंगा, अपने अमल से। गर्मी लग रही है कोई बात नहीं, महशर में इससे ज्यादा ही होगी, महशर में इससे ज्यादा होगी। अभी देखिएगा आप आगे रजब की न्याजों में खवातीन को एक रजब की न्याज एक इशू है, अपने कपड़े दूसरा इशू है, क्या पहनकर जाऊं। या मिसाल के तौर पे तीसरी चीज जो हमारे यहाँ बहुत ही खत्म होती जा रही है, अजान की आवाज सुनकर चुप कर जाना, बोले चले जा रहे हैं अजान, चुप कर जाओ, अजान हो रही है। हाँ यहाँ तो मस्जिदों के बीच में घर ले लिया, बने कभी इधर की बंद होगी तो उधर की शुरू हो जाएगी, कितनी देर तक चलेंगे अजाने, 6 मिनट। कभी आपने अजान को सुना है स्टॉप वॉच लगाकर, मैक्सिमम 1.5 मिनट चलती है, बहुत कोई लंबे अच्छे मौजिन होंगे वाले तो फिर वो 2.5 मिनट तक चलेगी। सुरैस तो पड़ता नहीं यहाँ अजान, इमाम काबा तो है नहीं कि लंबी लंबी अजाने हो, लेकिन अजान का एहतराम, अजान की आवाज सुनी चुप कर जाए। अच्छा जब आप चुप कर जाएंगे तो सामने वाले को भी एहसास होगा, हमारे कुछ काम हम शर्मा शर्मी भी करते, सारे जब मैं बोलती हूँ कितनी बुरी लग रही, वैसे तो मैं इस वक्त आपको बुरी लग रही हूँ जब आगे जो गुजर रही है, लेकिन और चौथा और आखिरी ऑप्शन कुरान के एहतराम। यूनाइटेड स्टेट में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बरादरान अहले सुन्नत का एक कारी गया, हमारे उलमा मौजूद थे, यूनाइटेड स्टेट में नहीं किसी और जगह पर, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उलमाए अहले तशय्यो भी थे और उलमाए अहले सुन्नत भी थे, और जैसे ही कारी साहब ने इकरार का आगाज किया, बहुत ही माजरत हमारे बाद उलमाए बुजुर्गवार बातें करते रहे, सुन्नी उलमा में से किसी ने उठकर कहा वो कुरान कहते ना वैदा कुरिया कुराना, नहीं मेरे जहन में कुरान के आए थे लेकिन जुबान पर नहीं आ रही, जिसका मफहूम तर्जुमे का यूं है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश होकर सुनो, तो इनको थोड़ा एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, अमली तबलीग, कुरान पढ़ा जा रहा है चुप कर जाओ। अच्छा आप चुप करेंगे ना बच्चे भी चुप करेंगे, बाज़ुकात अमली तबलीगों का इतना अजीब सा असर होता है, मिसाल समझ नहीं आता देनी भी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मैंने बाज बच्चों को देखा है वो किसी भी अलम के पास से गुजरे ना तो एक लम्हे के लिए सर जरूर नीचे करते हैं, बाइक चला रहे हैं हैंडल नहीं छोड़ सकते ना कि यूं करें नहीं, सर जरूर नीचे होता है एक एहतराम आंखों से। ये अमली तबलीग इसके अंदर कहाँ से आई, अंडा छोड़ सी बात है, या इसकी माँ ऐसी है या इसका बाप ऐसा है या दोनों ऐसे, घर का माहौल, सतरंगियों का एहतराम। हमारी एक बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त थी ज़ाकिरा है अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस खत्म होती थी ना तो जो काली चादर सोस खान के नीचे बिछाई थी ना उसे उठा लेती थी, बड़े अरसा मैंने उनका ये एटीट्यूड देखा, मुझे बड़ी ताजुब थी, क्या करती हैं उठा लेती हैं, सबको कहेंगे हटो हटो हटो, एक दफा मुझे राय नहीं गया, मैंने कहा खार आप ये करती हैं और समझ में नहीं आया आज तक कि आप काली चादर क्यों उठाती थी, तो कहने लगी ये फर्श अज़ा है, ये एक अलामत है, इस अलामत का एहतराम ये है कि आप ऐसे ही बैठे रहें जैसे जनाजे पर बैठा है। मुझे पता है खवातीन ने भी की ठीक ठीक टाटा शुरू कर देना, तो मैं इसको उठा लेती हूँ, एटलीस्ट मेरा दिल को ये तकलीफ ना हो कि ये अलामत हमारे दरमियान मौजूद है और उस अलामत का तकद्दस बरकरार नहीं रखा जा रहा। ऐसी सैकड़ों मिसालें आपके जहन में भी आ रही होंगी, करते हैं हमारे यहाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खुश नसीब हैं इस एतबार से कि हमारे पूरे सर्कल के अंदर ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। तो बहरहाल ये दीन के एतबार से चार मिसालें मैंने शायद दी अमली तबलीग की, क्या आप दीन के एतबार से यहाँ यहाँ ये कर सकते हैं, जब आप करेंगे ला मुहाला आपकी वजह से दूसरे लोग भी करेंगे। अब आ जाइए दुनिया की तरफ, हम दुनिया के मामला में भी अमली तबलीग करते हैं। मेरा एक बड़ी सुबह से दिमाग लड़ा रही हूँ लेकिन शायद मुझे 2 या 3 मिसालों से ज्यादा मिसालें नहीं मिली, पहली मिसाल आपने बाद मजलिसों में खवातीन को देखा होगा अपने साथ एक छोटी सी नेस्ले की बोतल लेके फिर रही होती। क्यों फिरती हैं? जवाब दे मुझे आप में से कोई, जहां गई है मजलिस में पानी नहीं होगा? नहीं, बाजू का ये नहीं होता। बाजू का क्या है, क्या खाना है शादियों में, बड़े पैमाने की कुंडों की न्याजों में? ये कच्चा पानी नहीं पीना चाहती, ये कच्चा पानी नहीं पीना चाहती। अपनी जुबान से नहीं कहती हम कच्चा पानी नहीं पियेंगे, अपने अमल से बता देंगे भाई हम उबला हुआ पानी घर से। इसके अंदर नेस्ले का पानी नहीं होता, ये बहुत ठंडा की होती है, खाली अंदर घर का उबला हुआ पानी है। ठीक है, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। आपको मैं मजे की बात बताऊं, पंजाब में अभी भी बहुत मेजोरिटी ऐसी है जो उबाल के पानी नहीं पीती। जब कराची के लोग पंजाब जाते हैं ना तो देखते हैं नलके से पानी की बोतलें भरी जा रही है तो उनके दिल को घोंसा सा लगता है, अल्लाह नलके का पानी उबाल तो लिया करो। फिर कभी कभी कुछ लोग फखर से कहते हैं हमारे यहाँ आपके यहाँ सर्विस की तरह फटे हुए पाइपलाइन नहीं है, हमारा साफ सुथरा पानी है। किसी को कुछ नहीं होता, आपको भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग अमली तौर पर हम बताते हैं कि हम कच्चे पानी को डी वैल्यू समझते हैं और पके हुए पानी के लिए एक एहतराम और रजिश के खाएं। ये एक चीज आपने मुआशरे में बहुत दफा देखी होगी, बाज माए इंटेलेक्चुअल बच्चे को भी भर के दे रही हैं, बच्चा ही तो नाश्ता कूतरेगा सारा दिन स्कूल में। पानी अपनी बोतल से पीना, तुम्हें पता है तुम्हारे टॉन्सिल्स बढ़ जाएंगे, तुम्हें पता है ये हो जाएगा तुम्हें, ये अमली तबलीग है। मैं उसे बता रही हूँ प्यास से मर जाना जहाँ बल्ब हो जाना कच्चा पानी नहीं। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद। मुझे हैरत है मैनेजमेंट मुझे निकाल क्यों नहीं देती इस तरह की हरकतें करने पर। लेकिन बहरहाल हम अपने अमल से बताते हैं कि हम कौन सा काम अहम है। उठा उठा के फिर रहा पानी की बोतल आसान है? बाद लोगों तो बच्चा उठाने की आदत होती है, पानी की बोतल तो बड़ी बात है। हमारे एक दोस्त के जुड़वा बच्चे थे, एक को छोड़ गई मस्जिद में, एक को ले गई आगे जाके याद है एक तो अभी सोया हुआ है। उनकी स्टॉलर डबल उसकी थी, क्रेडल में थे बच्चे। मैंने कही शुक्र है एक याद आ गया, देख करके दूसरा कहाँ गया। अगर खुदा से एक ही होता तो तुम्हें तो याद ही रहता, मियाँ के साथ बैठ के फटपटी पे चली जाती। लेकिन इंसान उठाकर फिर रहा है, ये जहमत क्यों है, ये जहमत क्यों है? अच्छा, इसी तरह से कुछ दीनदारों को भी देखेंगे, वो अपने बैग में से एक छोटा सा पाउच निकालेंगे, उसके ऊपर ज़ियारत वारिसा लिखी और नमाज़ों को फैला लिखी है। वो दूसरे पर भरोसा नहीं करते, जिस तरह इस मोमिना को भरोसा नहीं है ना कैसे वहां जाकर उबला हुआ पानी मिलेगा, पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। मैं शाम के वक्त, मैं तो खैर इतनी मोमिना नहीं हूँ, लेकिन वो मोमिनात जो अच्छी मोमिनात हैं शाम के वक्त कहीं जा रही हैं तो अपना वो फैला की पर्ची वाला कार्ड साथ लेकर जाती है, पता नहीं सामने वाले के यहाँ ताकीबात मिले ना मिले। जब नमाज पढ़ूंगी तो उबैला जरूर पढ़ूंगी। दीन के दौर से भी ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे माशरे में कमी नहीं है, ऐसा नहीं है नाउजबिला के वो जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी वाली बात। दूसरी मिसाल अमली एतबार से दुनिया के मामलात में बाद माओ बाप ने देखा होगा डंडा बरदार टाइप की माएं होती हैं, रात को बच्चों के सर पे सवार, ब्रश करो फिर सोना। बस अल्लाह का शुक्र है मैंने तो अपने बच्चों को, मैंने नहीं मसलन मेरे बच्चे ऐसे फरमा बरदार नहीं कि मैं कहूँ ब्रश करो तो कटरे खड़े हो जाए। लेकिन बाज अगर बात करती है, अल्लाह का शुक्र है मैं तो अपने बच्चों को आदत दी, कोई बच्चा मेरा रात को ब्रश के बगैर नहीं सोता। दुनिया की अहमियत उसे बता दी कि रात को बेटा ऐसे सो गए तो मैंने अपने बच्चे को स्टोरियों में सुनाया है कि दांतों के अंदर जम्स होते हैं, बचा हुआ खाना होता है, दांत सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कैविटी हो जाएगी, फिर बाप का बहुत सारा पैसा इस चक्कर में निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे समझदार हैं, ब्रश करके सोते हैं। आपने ब्रश के लिए उसे समझा दिया, वुजू एट नाइट भी सिखा देती, सोने से पहले वुजू करके सोने की कितनी हदीसें आपने सुनी होंगी अपने मुख्तलिफ असातिज़ा के मुँह से, बाबरकत मुँह से। लेकिन ब्रश करके सोना, या मिसाल के तौर पर बच्चों के वैक्सीनेशन, बहुत माजरत अब अगर मेरी ये गुफ्तगू कोई ऐसी खातून सुन रही हो जिन्होंने अपने कभी भी किसी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, शायद मेरी अम्मी, शायद मेरी सास, शायद हमारे बड़ों की का एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने वैक्सीनेशन ये क्या है, पोलियो के कतरे दफा करो, कोई नहीं होती अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। इस तरह की वहमी खवातीन मैं देखी हूँ माशरे में, वो पोलियो के कतरे का नाम भी नहीं बच्चे के सामने लेने देंगे कि पोलियो उड़कर लग जाएगी बच्चे को, लेकिन बहरहाल वैक्सीनेशन नहीं लगवाए। लेकिन अब आज की नस्ल के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई, आपने कोई माँ ऐसी नहीं देखी होगी जो बच्चों के वैक्सीनेशन को ड्रॉप कर दे, क्यों? क्योंकि हमने इन चीजों की अमली एतबार से इतनी तबलीग की कि ये चीजें माशरे के अंदर स्प्रेड हो गई। जब हम दुनिया की खातिर इतनी मुबल्लिग बन सकते थे, दीन की खातिर हमें ऐसा कौन सा काम किया? दीन के खातिर बहुत माजरत, नॉर्मली हमारा लहजा रिजिड होता है, अक्खड़ सा मिजाज होता है हमारा। मजे की बात यह है कि मैंने पिछली दफा भी आपको एक मिसाल दी थी, मैं किसी मोमिना से कहूँ आप में से खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरी जुबान जल जाए अगर मैं आप में से किसी को कहूँ, लेकिन अगर मैं किसी को कह रही हूँ आपका हिजाब नाकिस है, आपकी पीछे सारी नमाजें बातें हैं, आपका दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखने का दिल होगा? बताए, इंसाफ से बताए, किसको मैं अच्छी लगूंगी? करते हैं आपको अच्छी लगूंगी ऐसी बात कहने के बाद, बहुत रेयर नॉर्मली लोग चिढ़ जाते हैं। अच्छा, आपने एक का हिजाब बातिल किया, एक का वजू बातिल किया, एक को किबले की डायरेक्शन समझाई। अगर हम किसी इमाम बारगाह में बैठे हुए, जैसे हमारे महफिल शाह खुरासान है, मैं एक दफा वहां नमाज के लिए खड़ी हुई, जमात होती है वहां, मैंने इधर वाली मोमिना से पूछा पेश इमाम का नाम, तो कह रही पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं है तो जब आपको नाम नहीं पता तो अदालत कहाँ से बताओगी? दूसरी से पूछा तो कहती हैं कभी कोई होते हैं कभी कोई, दो तीन के नाम उन्होंने गिनवा दिया। मैं शक में पड़ गई, एक ही साहब को उनमें से मैं जानती थी जिनके पीछे बाजू का दूसरे अफराज भी रिलायबल नमाज पढ़ते। बहस क्या है? अब मैं सबसे कहूँ कि आप लोग जो जमात पढ़े सबकी जमात गलत है, तो उसके बाद जैसे ही मुझे महफिल शेख खुरासान के वॉलेंटियर देखेंगे ना, डोली डंडा करते हैं बाहर फेंक देंगे, मिस्टर बाग में फेंक देंगे, कहेंगे इसको अंदर घुसने नहीं देना। लेकिन नॉर्मली हम दीनदारों का रवैया क्या होता है? आपका वजू गलत है। हम कभी इस तरह से भी बात शुरू कर सकते हैं, बड़ी मुद्दत तक मैं भी वजू के अंदर ये गलती करती रही हूँ। यानी अब वो जो वाकया बचपन में सुना ना, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कहा कि हम वजू करके दिखाते हैं, वजू चेक करो, वो वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। हिजाब के साथ तो बहुत सारी जगहों पर पॉसिबल नहीं है, और अगर आप किसी को कहें तो हर दूसरा शख्स अपने आप को मुल्ला सदरा समझता है, आए मैं आपका वजू चेक करती हूँ, नहीं सोचेंगे कि मैंने अपना किसी को नहीं दिखाया हुआ, मुझे नहीं पता अल्लाह के आसरे का वुजू करती हूँ। लेकिन हर शख्स अपने आप को आलिम वाजिल समझता है, और जहले मुरक्कब का शिकार है हमारा मुआशरा। जहले मुरक्कब का क्या प्रॉब्लम है? आप सोए हुए को उठा सकते हैं, जागते हुए को उठा सकते हैं। एक औरत आके आपसे कहती है मैं नहीं जानती, आप उसे कहते हैं आओ मैं तुम्हें यस्सन कुरान पढ़ाऊंगा। एक कहती है मैं मुफस्सिर कुरान हूं, तो आप उसे यस्सन कुरान पढ़ा सकते हैं? दूसरों की गलतियों को बयान करने से पहले अपनी गलती को बीच में ले आए। अलबत्ता शरीयत एक रिस्ट्रिक्शन, एक पाबंदी अलग से लगाती है। वो रिस्ट्रिक्शन, वो पाबंदी ये है कि आप अपना गुनाह बयान करने के मजाज नहीं। गुनाह बयान, मैं जाती तौर पर अपना कोई गुनाह आपको नहीं बता सकती, दूसरा गुनाह होगा ये मेरा। पहला गुनाह मसलन मैं आपसे कहूं, मैंने आज अल्लाह ना करे जानते पूछे फजर कजा कर दी, खुदा ना खास्ता, वो पहला गुनाह था, ये दूसरा गुनाह है मेरा और मेरे अल्लाह का मामला था, मैं आपसे क्यों मेंशन कर रही हूँ? ठीक है, कुछ बातों को अल्लाह पसंद करता है। मजे की बात है, अमर बिल मारूफ व नहय अन मुनकर के बाब में आका किराती ने बाद दरसों में एक मिसाल ये कहा, जुर्रत है गुनाह देना। आप देखेंगे मैं ये गुनाह कर रही हूँ तो आप कहेंगे चलो हम भी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो कर रही है। मिसाल के तौर पर किसी माँ ने अपनी बच्ची को कहा कि बेटा जो नमाज, जो खवातीन पर्दा नहीं करती ना, उनके ऊपर अजाब आ जाता है, और कोई मदरसे का ऐसा टैबलो भी दिखाया। मैं भी उस प्रोग्राम में थी, बहुत बड़े पैमाने पर, उसमें आग की कैंची उसके बाल नोचे जा रहे हैं, वो औरत वाह विला कर रही है। बच्चा जैसे ही बाहर निकला, उसके साथ उसकी दादी थी जो पर्दा नहीं करती। अब आप खुद अंदाजा कर ले बच्चे ने अपनी माँ से क्या कहा होगा, और माँ से पहले से दादी से क्या कहा होगा। अच्छा, ये बात दादी, नानी, पप्पी, खाला सब पर सादे कह सकती। आपके ख्याल में अपने बच्चों को ये सोच दे देना कि हर गुनाह के बदले में अजाब है, वो चुन चुन के ऐसी मिसालें लाएंगे आपके लिए, परले दर्जे के गुनाहगार, और जिंदगी और आसाइश और रिफाह में मेरे और आपसे हजार गुना बेहतर। फिर आप उन्हें बैठ के अदले इलाही पढ़ाएंगे, अमहिल हम रुवैदा की आयतें पढ़ाएंगे। यानी एक ये एक सोच हम कभी कभी जब नया नया मदरसा ज्वाइन करते हैं तो बच्चों को देते हैं ना, यूं करोगे तो अजाब आ जाएगा। मतलब मुझे किसी मोमिना ने एक जमाने में खत लिखा था, बड़े साल पहले की बात है, तो मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते। मैं अपने बेटे से कहती हूँ नमाज पढ़ो, नमाज ना पढ़ने वाले का ये अजाब है, वो अजाब है। कहा डैडी को फिर क्यों नहीं होता? अब आप मुझे जवाब दे, बोले कोई एक, ये हम गलती करते हैं या नहीं करते? बच्चा टो में लग जाता है, वो इंतजार करता है घर के बड़े कभी गलती करे और कहे कि अम्मी इनको क्यों कोई अजाब नहीं होता, ये सारे अजाबों से आप मुझे डराती हैं, गाना सुनोगे बहरे हो जाओगे, हाफिजा खत्म हो जाएगा। मसलन वो टॉप क्लास के जो सिंगर्स हैं वो क्यों नहीं खत्म हो गए इस तरह से? शायद हमारा सोर्स ऑफ कन्वे, हमारा अगले तक पैगाम पहुंचाने के तरीके के अंदर खलल है। अजाब से डराना, हमेशा लालच देना जन्नत का। अच्छा मजे की बात है, बाजू का जो जितने मोमिन मुत्तकी परहेजगारों को देखते हैं मुश्किल में, तो कहते हैं ऐसा दिन नहीं चाहिए, वो बेचारी तो इतना सब करती हैं उसके बावजूद ये मुश्किल में गिरफ्तार है, उनका बच्चा पैरालाइज है, उनका शोहर की हड्डी टूट गई, उनकी माँ मर गई, उनका ये हो गया, ये चीजें। यानी नॉर्मली हम जो छोटी छोटी सी कोताहियां प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करते हैं, या मिसाल के तौर पर मैंने ये सोचा कि मैं दीन की तरफ रुझान रखती हूँ, मैंने आपसे कहा ना पिछले संडे कहा था ये दो लाइफ पार्टनर्स हैं, या ये दो बहनें हैं, या दो देवरानी जेठानी हैं, या दो कोई भी ऐसे रिश्ते हैं जो बराबरी की बुनियाद पर मुआशरे में चलते हैं। आप उसे ना तस्मी कर सकती हैं, आप उसे ला, कुछ लोग ऐसे मुआशरे में कम नहीं है, आप उन्हें बिठाकर समझाते रहे जन्नत में जाओ, कहेंगे मैंने मरना ही नहीं है तो जन्नत की क्या बात है, पूरे तो मैं पंखा जलेंगे, तो कहेंगे मैं अपना एसी साथ कमर में लेकर जाऊंगी, तुम हूरों के पंखे की बात ना करो। उनके ऊपर तमाम, उनके ऊपर कुरान मिसाल देते हैं, वो अशद्दु कसा, दिलों की मिसाल पत्थरों से देते हैं कुरान, पत्थर पर भी पानी गिरता है गिरता है गिरता है, पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन वो अशद्दु कसा कुरान कहते हैं कुछ दिल पत्थरों से ज्यादा बुरे हैं। इनके ऊपर आप जितना भी मौजदा करते जाए इनके सिर पे कोई असर नहीं पड़ना, वो कहां से MP3 के वो निकालेंगे और कहेंगे जी आप उसे कुछ कह रही थी। बस यहाँ पर बसा औकात। चौथा, मैंने अभी तक आपको तीन हरबे बताए, तबलीग, तहदीद और तस्मी, चौथा हरबा है तलखीन। ये इनसे निकला हुआ, ये पिछले तीन से एक्सेप्शनल है। तलखीन, बुरों को भी कभी कभी अच्छा कहिए, वो आपको अच्छे बन के दिखाएंगे। बुरों को कभी कभी हम पता क्या होता है, तुम्हारी तो नमाज ही ऐसी है, अगर आप 13-14 साल के बच्चे को गाहे बगाहे माँ खाला बड़ी बहन फुफी मामी चाची बन के कुछ भी कहें तुम्हारी नमाज ऐसी है, तुम्हारी नमाज ऐसी है, तुम्हारी नमाज सुधरेगी, तो वो कहेगा शुक्र नहीं करती, पढ़ लेता हूँ, पढ़ नहीं छोड़ दूंगा, आप तो मेरी नमाज को देखते ही आपकी तकरीर शुरू हो जाती है। हकीकतन अच्छा, आप इस उम्र के बच्चे के लिए तो कोई ना कोई सोर्स होगा, आप इसे इतना अच्छा कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अच्छी नमाज पढ़ने लग गए, पहले से बेहतरी, वाकई वो पहले वाली से तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ जाते हैं ना बच्चों में मदरसे जाते। तलखीन, तलखीन शहीद मुर्सा मुदरी, एक मिसाल मैंने शायद हजारों दफा मुख्तलिफ दरसों में दी हो, वो बड़ी प्यारी मिसाल है शहीद मुर्सा मुदरी की, छुट्टी कराने वाली आप लोगों को दे चुकी हूँ पहले, याद आई, सही कहते ना यही से झाड़ के जाते हम ज्यादा, इसीलिए याद नहीं आता। शेख मुर्सा मुदरी ने की किताब है हिदायत था व हिकायत था दर आसारे मुतहरी, शेख मुर्सा मुदरी के शहादत के बाद उनके सारे वो जो किताबें थी पता नहीं शायद 50 के करीब किताबें और मकालात, उनमें से स्टोरियां निकाली गई और उन स्टोरियों को कंपाइल किया गया, उस किताब का नाम था हिकायत था व हिदायत था दर आसारे शेख मुर्सा मुदरी, उसमें शेख मुर्सा मुदरी अपने बचपन की एक मिसाल देते हैं, कहते हैं तलखीन इंसान के रूह पर कैसा असर करती है, इंसान कभी कभी अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाता है। और हमारे एक बरादरे बुजुर्गवार ने भी एक दफा मेंबर से यही मिसाल दी, कहा जैसे मैं मेंबर से उतरूं आपको है मौलाना आज तो आपका गला बड़ा ही खराब था, मैं करूंगा दूसरा शख्स आगे बढ़ के कहे मौलाना पेगम से कहे कि दूध में हल्दी डालकर आपको पिलाए गला खुल जाएगा कल की मस्जिद के लिए, मैं तीसरा कहे आपके फेफड़े खिंच नहीं जाते कैसे लंग्स है आपके, मेरा होता तो अभी तो बोलने से कासिर हो गया होता, कितना आप चिल्लाते हैं मसाइल में, आप आज खानम से कहिएगा आपको शहद के अंदर काली मिर्च पीस कर खिला दे, कहा चौथे बंदे तक मेरी आवाज ही नहीं निकलेगी और मुझे लगेगा कि वाकई मेरा गला मेरे कान मेरे टॉन्सिल सब सूज गए हैं, मुझे आवाज ही नहीं निकलेगी, घर जाऊंगा बीबी से इशारों में कहूंगा कुछ खिला मिला, इसलिए कि बोलने से कासिर। शेख मुर्सा मुदरी ने जो मिसाल दी है वो एक उस्ताद की है कि कभी छुट्टी नहीं करता, शुक्र मेरा शुमार ऐसे उस्तादों में नहीं होता, इतनी छुट्टियां करने की शौकीन हूँ मैं, खैर बिलावजा नहीं करती, कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है माशाल्लाह अल्लाह रखे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम तो है, लेकिन कहा वो कभी छुट्टी नहीं करता था। उस्ताद शागिर्द ने, एक शागिर्द जो बड़ा जहीन किस्म का था, उसने कहा मैं उस्ताद से छुट्टी करा दूं बाकी सबने कहा हम तुम्हें ट्रीट देंगे, कहा कैसे कराओ, फिर वो वाकया मैंने आपको सुनाया है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कायम की मोमिनात को सुनाया है कि एक ने कहा जो कहूँ तारीफ करते रहना, बस ओके यू आर राइट तुम सही कह रहे हो, यस बॉस सब जो आपके मुंह से निकल रहा है वो बुहार है। बच्चे ने, पहले बच्चे ने कहा उस्ताद तबीयत दुश्मना नासाज, उस्ताद ने कहा चुप बैठ जा छोटी सीधी बातें नहीं करो, दूसरा खड़ा हुआ मैं आपके लिए शोरबा बनवा कर लाऊं, आपका तो चेहरा ही उतरा उतरा है लगता है रात में आप उसी तरह से नींद नहीं आई, चुप इंसान बनो, तीसरा चौथा कहा, 12-13 बच्चों ने जब कहा तो उस्ताद ने पैर लंबे कर लिए और कहा मेरी वाकई तबीयत ठीक नहीं, आज तुम सारे के सारे घर के चले जाओ। ये तलकीन है, ये तलकीन है। साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं साइकेट्रिस्ट? आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, वापिस हो जाता है। अच्छा मैंने तलकीन के ऊपर कुछ कहानियां निकाली लेक्चर के तैयारी के दौरान, पुरानी कुछ कटिंग्स पड़ी है मेरे पास। एक उसके अंदर उन्होंने जंगे जहानी दुबुम की मिसाल दी है, जंगे जहानी दुबुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी मिसाल ये कहा कि एक शख्स नकल करता है, डॉक्टर नकल करता है, कहा तलखीन का इतना अजीब असर है इंसान की नफ्सियात में, कहा हमें एक कैदी की टांग से गोली निकालनी थी, सुन करने वाली दवाई खत्म हो चुकी थी और ये कैदी तड़प रहा, कहा मैंने गदला पानी भरवाया सुरिंज में और कैदी से कहा कि ये आ गई आ गई आ गई दवाई, चलो मैं तुम्हारी टांग को सुन करूँ और गोली निकाल लूँ। कहा वो गंदा पानी मैंने उसे इंजेक्ट कर दिया और गोली निकालने से एहसास भी नहीं हुआ, वो समझ रहे टांग सुन हुई है। इंसान है ऐसा, है ऐसा, यानी तलकीन का असर ये है इंसान की। बाद का मसलन अब कहना नहीं चाहिए लेकिन मसलन मैं कभी कभी सोचिए होम्योपैथी की गोलियां क्या असर करती होगी इंसान पर, मीठी मीठी गोलियां चूस रहे हैं, कतरे डालकर पी रहे हैं, लेकिन इंसान अगर कोई ऐसी चीज लेता रहे तो इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ बेहतरी आ रही है, फलानी चीज असर कर रही है। हत्ता मैंने देखा है खवातीन किसी ऐसी औरत के पास चली जाए जिसे दीन और दुनिया का इल्म ना हो, ओके मैंने दम कर दिया। हाँ अल्लाह का शुक्र है पिछले हफ्ते से मेरी सास के लिए बड़ा फर्क आ गया है, बेटी बेटी कहते हैं उनका मुंह सूख कर, शौहर के भी मिजाज में बड़ा फर्क है। बस आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नजराना पेश करूं? वो कहे जीक्यू का एक सूट दे जाओ, अब ये अपने सूट छोड़ देंगे लॉन का, उसका जीक्यू का सूट खरीदने चल पड़ेंगे। ये तलखीन नजरअंदाज है, आप मानती है या नहीं मानती? और ये चीज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं और बस खत्म कर दूं सारी बहस को। ये चीज बाजूकात आप देखिए, सालन के अंदर नमक तेज है, एक कहे नहीं कोई तेज तेज नहीं है, इंसान बन के खाओ, दूसरा भी कहे नहीं ऐसा तेज नहीं है, तुम्हारा मेरा लगता है मुंह का टेस्ट खराब है, तीसरा चौथा छठे सातवें पर इंसान कहते वाकई शायद मुझे ही लग रहा है बाकी सारे कैसे खा रहे हैं। और कभी बरअक्स करके देखे, नॉर्मल रखें जितना डाल दिए रोज इतना नमक डाल दें और खुद ही से इत्तेदा कर दें कि आज सालन में नमक तेज नहीं, सब लग जाएंगे आपके पीछे, अम्मी जहर कर दिया आपने, कोई कहेगा दही डाल दो, कोई कहेगा खीरे काट दो, कोई कहेगा इसके अंदर आटे की गोलियां डाल दो। ये क्या चीज है? ये तलखीन है। तलखीन करें, दूसरे को अच्छाई की तलखीन करें। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल, आगे बढ़े इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि बिस्सब्र वस्सब्र की तलखीन करना है दूसरे को। अल्लाह का शुक्र करो बहुत सोच अच्छी हो, मसलन हमारे पास बाजू का मोमिनात हमें अननोन नंबरों से भी दुख सुनाती हैं, आकर भी सुनाती हैं बहुत सारी कहानियां। दो रवैये होते हैं, आपने भी घर में कितने लोगों के दुख सुनते हैं हम, खुद कब्र में जो दुखी होंगे ना वो भी हमें पता चलेगा। बाज लोगों को हम जानते हैं ये होती है, ऐसा थोड़ी हर हर दुख सुनना जायज थोड़ी होता है, सुन लेते हैं आए बेचारी रो रही थी कैसे उनको कहती बाजी चली जाए, दिल की भड़ास निकाल दी। बेटा जब फरिश्ते अपने दिल की भड़ास निकालेंगे ना, हम मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, कुरान कहता है ऐसे सख्त रिजिड, ओ जिसे कहे ना बड़े पक्के किस्म के फरिश्ते हमने जहन्नुम में रखे हुए, कोई एक्सक्यूज एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। हाँ कहीं ये जगह जल गई वो कहेंगे जले, हम उल्टे लटक के मर गए वो कहेंगे मरे, वो अपना काम करे चले जाएंगे और दिल की भड़ास निकाल लो तुम दूसरों की, और सुनो दूसरों की कीमतें औरतें बड़ा। अच्छा ऐसे में बाज वक्त होता है तुम्हारी जगह मैं होती तो मर गई होती, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरा तो दिल बैठ गया होता, भैया तुमने तो बड़े सबर से गुजार ली, ऐसे कुरान ससुराल वाले ऐसा शौहर ऐसे बच्चे, वो बेचारी घर जाएगी ना तो उनकी आंखों से आंसू पट 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 गिर रहे होंगे, ये आंसू आपके उस बेजा तलखीन का नतीजा। आप उनसे कहें अल्लाह का शुक्र करो सर पर छत है, अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ने भूखा नहीं रखा, अल्लाह का शुक्र करो, कोई बात नहीं बच्चे भी नहीं सुनते, वक्त के साथ साथ ढल जाएंगे, कभी की रातें लंबी कभी के दिन लंबे, लोगों पर तो इससे ज्यादा पड़ी हैं, हमने तो कभी कोई दीन की खातिर कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह ने हमें पता था, अल्लाह ने को पता था हम कितने पानी में, इसीलिए हमें ऐसे जमाने में खड़ के चार से आपने जुमने कहे, सामने वाला जब वापस जाएगा ना तो उसका हौसला होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है? आपकी तलखीन की वजह से। कभी कभी हम बच्चों को तलखीनें बेजा करते हैं, तुम सुधर सकते ही नहीं, वो कहता अच्छा नहीं। और इसके अंदर आ गए फलसफी ने बहुत ही प्यारी मिसालें दी हैं, लेकिन बहरहाल मैं मिसालों में जाना नहीं चाहती कि आप चाहे ना 2.5 साल के बच्चे से कहें वो शीशे का ग्लास यहाँ ला के रख दें, उठो चलो कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ला के रख दिया, देखा कितना अच्छा बच्चा, ये इससे ज्यादा काम कर सकता है, और आप गिरा दोगे अकल से अंधे, तुम्हें किसने कहा था वहां से शीशे का ग्लास उठाओ, इस घर में बर्तन लाने नहीं चाहिए, वो कहेगा टूट गया उठाओ, एक तो शीशे का बर्तन टूटने का दुख, दूसरा झाड़ू से वो सारा उठाना एक दूसरा दर्द हो जाता है खवातीन के लिए, स्पेशली मदरसे से जाकर अगर आगे कोई बर्तन टूटा हो तो वहां के दिल भी टूट जाता है, कभी जो सुकून का सांस मुझे मेरा नसीब हो जाए, बर्तन तुम तोड़ते हो, लड़ाइयां तुम लोग करते हो, एक मोमिना मुझे कहने की मेरे बच्चों ने मेरी बीमारी के अरसे में बेड तोड़ दिया बीच में से, इतना कूदे, उन्होंने कहा चल अल्लाह का शुक्र अम्मा बीमार है, ऊपर खड़े होते थे जम्प, कहा बीच की दोनों लकड़ियां बैठ गई, मैं आई तो अजीब कुआं टाइप का बना हुआ प्यारा टाइप का तलखी, मेरे बच्चे बहुत बदतमीज हैं, मैंने तो पिछले बार आपको होमवर्क नहीं दिया था, नाबालिग बच्चे की गिबत जायज है, आप बड़े खुश नसीब हैं वरना मैं हर मदरसे में होमवर्क देती हूँ, गवाह है मेरे पास सोल्जर बाजार के कुछ लोग जो जानते हैं मेरा मिजाज, होमवर्क दे देती हूँ नाबालिग बच्चे की, करते हैं उसे गिबत कंसिडर करते हैं, यानी वो दीनदार लोग जो बड़ों की नहीं करते वो भी इनकी कर जाते, बहुत ही बदतमीज हैं, बात तो सुनते ही नहीं, इनको लगता है माँ बकवास कर रही है, ठीक है, और हमेशा बाप की साइड देते हैं, ये बड़ा माओं का शिकायत है हमेशा, अच्छा मजे की बात है मैं और आप इस उम्र में भी अब्बाओं की साइड ज्यादा जल्दी अम्माओं से ले लेते, फिर खुद क्यों लेते, नॉर्मली बेटियां, यानी मैं खवातीन से मुखातिब तो बड़े इत्मीनान से कह सकती हूँ, बेटियां हमेशा निजाम अब्बा की साइड लेती, अम्मी आप उस वक्त ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना, अब वो पप्पो ने कुछ कह दिया, डैडी का क्या कसूर है, अब्बा का क्या कसूर है, पापा का क्या कसूर है, हम खुद इस 9 साल में अब्बा की साइड लेते हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब्बा की साइड ना ले, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन ये काम हम करते हैं, खुलासा तलखीन, और आखिरी चीज, और मैं कुछ जुमले आपकी खिदमत में मसाइल की पढ़ डालूं, तलखीन बुरों को अच्छा कहिए वो आपको अच्छा बन के दिखाएंगे, और कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मोमिन बच्चे हैं, परवरदिगार तेरा शुक्र, उसके अंदर इस दवा के तायरा के अंदर भी एक थैंक यू का कुछ आर्टिकल था, वो आधा पौना मैंने पढ़ा कि पानी के ऊपर लिख दें और फलानी चीज के ऊपर, आप ये सारी बातें सोचें, कुरान कहते हैं तुम नाजाबी मैं सजी, तुम शुक्र करो मैं तुम्हारे लिए नेमतों को बढ़ा दूंगा, वमन लम यशकुर अल-मखलूक लम यशकुर अल-खालिक, जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खालिक का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो आंखों से नजर आने वाले इंसान का शुक्रगुजार नहीं है वो ना देखे जाने वाले खुदा का शुक्रगुजार कैसे हो सकता है, कभी कभी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, अल्लाह का शुक्र है आज जिसने नमाज के बाद हज़रत ज़हरा की तस्बीह भी पढ़ी, हाँ हमेशा उसे नेगेटिव वे में तलकीन करते हैं, पता नहीं कौन से ख्याली बच्चों की बातें करते रहते हैं जो नमाज के बाद फजर की दुआएं मशरूल पढ़ते हैं और असर के बाद अबू हमजा सुमाली पढ़ते हैं, आपने कराची में ऐसे बच्चे देखे मुझे भी दिखाए, मैं उनसे जाकर ऑटोग्राफ लूं, ओ ये खुदा ये बच्चा कैसा बच्चा है, नहीं करते ना, लेट देम फ्री, मक्तबे रसूल में आ गए, कराची ने कहा है कि हमारे पास रिवायतों का ढेर है, जो रिवायतें कहती है नाबालिग से मुस्तहबात मत मांगो, और हम मांगते हैं नॉर्मली, हम पीछे ही पड़ जाते जब खुद कोई तकरीर मजलिस सुन लेते ना, अच्छा एक चीज हम ये भी कह सकते थे परवरदिगार तूने मेरे दिल के अंदर ये मोहब्बत डाली तो मुकल्ले बिल्कुल हुए इसके दिल के अंदर भी डाल दे, वो जैसे वो औलाद को सुधारने के सुनहरी उसूलों के अंदर डॉक्टर आबिद ने मिसाल दी, 2 रकअत नमाज पढ़ो फिर कहें, खुद ब खुद असर होता है बाद चीजों का, बाद हम चाहते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और सारे काम अल्लाह मियां संवार दे, अल्लाह मियां हजरत हाजरा को भी 7 दफा सफा और मरवा के दरमियान फिराया, पहली दफा ही जमजम निकाल देता, हजरत मरियम से भी कहा इसको हिलाओ, अल्लाह मियां जब खुश दरख्त हरा भरा हो सकते तो ऊपर से खजूरें गिर भी सकती हैं, हजरत मरियम उठा दी मुंह में डाल दी खा लेते, इसे हिलाओ सफा मरवा के दरमियान दौड़ो, मेहनत करो, मेहनत करोगे खुद ब खुद पाओगे, लेकिन इस मेहनत के अंदर बहरहाल इस डील साहब ने 9 नुस्खे बताए हैं कि लोगों को अपना अहम ख्याल बनाइए इस तरह से कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक काम करें, और उसके अंदर मसलन छोटी छोटी सी टिप्स दी हैं, मैंने कुछ टिप्स को नकल भी किया है यानी लिखा भी है कि हम किस तरह से दूसरे को शर्मिंदगी से बचाइए, मसलन आपके सामने आपने देखा किसी ने गलत नमाज पढ़ी, अगर जैसे ही आप कहिए ना ये नमाज गलत है, मुझे याद है हमारे एक उस्ताद ने नकल किया था इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के हवाले से, कहने एक ज़ईफ़ा आई इमाम शहीद की माँ थी, शहीद की फैमिली से बिलोंग करती थी, वरना इतना आसान नहीं था उस जमाने में इमाम खुमैनी तक पहुँचना। इस मोमिना ने रहबर कबीर से पूछा कि नमाज का कोई मसला पूछा, तो इमाम खुमैनी ने कहा फिक्र नुक्ते निगाह से ये नमाज ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो इसने फौरन कहा क्या मेरी नमाजें कबूल नहीं है? मकाम यानी रहबर कबीर इमाम खुमैनी रहमा फरमाते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपकी नमाज कबूल है या कबूल नहीं है? कबूलियत का इख्तियार खुदा के पास है। मैं फकीह होने के नाते, मुश्तहिद होने के नाते, आलिम होने के नाते मैक्सिमम जो बात कर सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि आपकी नमाज सही नहीं है। सेहत की बहस अलग है, कबूलियत की बहस अलग है। मुमकिन है मेरी किबले की डायरेक्शन, वुजू, हिजाब, किरत, तजवीद, हर चीज अरकान सही हो, मेरी नमाज कबूल है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन मुमकिन है एक मोमिना बेचारी बुरे हिजाब में नमाज पढ़ी, गलत तरीके से नमाज पढ़ी, लेकिन वो खुदा के नजदीक, वो आपने कितनी मजलिसों में सुना होगा उसके मेरे नजदीक उसका करीर करीर था, लेकिन इसके बावजूद दूसरे को शर्मिंदगी से हत्तुल इम्कान दीन के मामले में जरूर बचाए। जितना आप उसे शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश करेंगे ना, उसके अंदर एक गिल्ट को पैदा कर देंगी जो उसे अच्छे रास्ते पर ले जाए। अल्लाह का शुक्र है कोताहियां तो सबसे, मैंने कहा ना अपनी गलतियों का इतराफ करें, कोताहियां तो बहुत हुई है, तो अल्लाह का एहसान, अब अल्लाह मैंने मदरसे का रास्ता दिखा दिया है, परवरदिगार का एहसान, मरने से पहले उसने एक सही ट्रैक पर चला दिया है। अच्छा अगर आप उसे शर्मिंदगी से बचाएंगे ना, वो भी आपसे शायद कभी जिंदगी में जरूर पूछे जिस मदरसे में जाते मुझे भी ले जाओ। लेकिन अगर आप किसी को शर्मिंदा करेंगे ना, तो कहेगी नहीं चाहिए मुझे ऐसा मदरसा, जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया मुझे भी ऐसे ही बनाया। ये चीज ये यानी ये कोताही कभी कभी अनजाने में हमसे सरजर बोले, अब इतराफ है गुनाह, लेकिन हकीकत है कभी कभी हम अनजाने में किसी को शर्मिंदा कर जाते हैं, और कभी कभी हमने बड़ा ख्याल रखा, बड़ी कर्टेसी शो की, बड़ा अकेले में बात की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सामने वाला हमारे सामने अपने आप को डिग्रेड समझता है, और जब वो हमसे मिलेगा उसकी आंखों में एक खिजालत होगी, एक हेजिटेशन होगी, इनको पता है कि मैं ये गलत काम कर चुका। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हो जाए, देखा नहीं देखा, फारसी का एक मुहावरा, शुतुर दीदी ना दीदी, ऊंट नजर आया नहीं आया, चलो वाकई कुछ नहीं नजर आया। दूसरों को शर्मिंदगी से बचाइए। फिर इसके अंदर इन्होंने छोटी छोटी सी कहानियां चलाई हैं कि किस तरह से इंसान शर्मिंदगी से दूसरों को बचाता है अपनी गलतियों। कोई शख्स हुक्म का गुलाम बनना पसंद नहीं करता। लिखिए जुमला लिखिए, मिसाल है, अब आप लाएंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं रह गया मिसाल दे सकूं। कोई शख्स उठो नमाज पढ़ो, फर्ज करें थोड़ी देर के भी तस्वुर करें, आप में से कोई मेरी बहुत जानिसार किस्म की दोस्त है, हर तीसरे दिन मेरे घर आती है, वैसे उठो नमाज पढ़ो, अच्छा लगेगा? क्या लगेगा बोलिए, क्या पड़ेगा? अजीब ही लगेगा, गुस्से में चढ़ेगा, क्या है मेरी मर्जी, तुमने मेरी कब्र में जाना है, नहीं ना ये सोच आती है ना, स्पेशली यंग गाइस, नौजवान बच्चों को तो फौरन ये बात बुरी लग जाती है, उनको जरा सा कहा जाए ये आस्तीन यहाँ तक कर लो, नहीं करनी। यानी ये चीज हमारी नई नस्ल में ज्यादा है, यानी खुदा सा मेरी नई नस्ल, मेरी औलाद इंक्लूड करके सारे मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमारा तरीका हुक्म का गुलाम बनाने वाला होता है। फर्ज करें शख्स ने 40 साल की उम्र तक नमाज फजर नहीं पढ़ी, अब कहीं मुसलमान हो गया, किसी मजलिस में डर गया, अजाबों से भिदक गया, अब हम उसे नमाज चप्पल लगाने के चक्कर में आ जाएंगे, ठंडे ठंडे हल्का हल्का, फौरन अल्लाह ने सारे कुरान के अहकामात एक साथ नाजिल कर दिए थे, नहीं थे ना? अल्लाह ने को पता था हम कैसे मिजाज के हैं, इसीलिए वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब दीन आहिस्ता आहिस्ता आया तो तुम भी दीन आहिस्ता आहिस्ता दो। हम चाहते हैं पांच, बकौल हमारे उस्ताद के इतनी प्यारी बात आकर नादिर सादिकी ने एक दर्स में कही, कहा लोग चाहते हैं तकवा एक इंजेक्शन बन जाए, चले इधर आए आपको तकवे का इंजेक्शन लगाओ, आपको एक गुनाह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, हमने मुंह के अंदर रखी, नमाज पढ़ती हूँ फिर भी गुनाह, इंसान है इंसान का तो इधर उधर ध्यान जाएगा। तो बहरहाल कोई भी शख्स हुक्म का गुलाम बनना पसंद नहीं करता। दूसरों पर नुक्ताचीनी करने से पहले अपनी गलतियों का जिक्र करें। लोगों की तवज्जो, आखिरी जुमला, लोगों की तवज्जो इनकी गलतियों की तरफ बिला वास्ता मबजूल कराइए। ये पैगंबर की रविश भी थी, ये इसने क्या कहना है, पैगंबर के पास जब कोई शख्स आता था, फर्ज करेंगे शख्स किसी गुनाह का आदी है, किसी गुनाह में मुलव्वस है, किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है, पैगंबर कभी नहीं कहते थे तुम ये काम कर रहे हो। पैगंबर के मुंह से एक जुमला निकलता था, मा बालन नार, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे करते हैं, अच्छा मजे की बात है, आप आम मुआशरे में भी किसी के सामने कहे ना तो उसको एहसास होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो मेरे अंदर भी है। जैसे उन किताबों को देखने के बाद क्या मैं बखील हूँ, क्या मैं हासिद हूँ, क्या उसमें जो सवाल जीवन में उनको पढ़ने के बाद लगते हैं ना, कितनी चीजें पाई जाती हैं। और वैसे हम अल्लाह का शुक्र है शबे कदर में सोचते हैं, अल्लाह पाक तेरा शुक्र मैं तो गुनाहों से दूर हूँ, बहुत सारे गुनाह नहीं कर। लेकिन हकीकतन माँ बाल अन्नास लोगों को क्या हो गया है, मदरसे में आने के बाद ज्यादा बद अखलाक हो जाए, सामने वाली खुद ही खटक जाएगी कि हाँ शायद मैं बद अखलाक हूँ। मदरसे में आने के बाद यूं करते हैं, कहीं ना कहीं तो डंडियां हम भी मार जाते हैं, ऑटोमेटिकली सामने वाले के अंदर एक मुस्बत रुझान पैदा हो जाएगा अगर हम चाहें। और आखिरी चीज थी तवस्सुल, पांच ते मैंने आपको सुना दी, तवस्सुल, तवस्सुल करें। तवस्सुल बहुत तेजी से मुकद्दरों को बदल देता, मांगे अल्लाह से बैठ जाए। मौला का एक बहुत ही प्यारा जुमला है, मौला कहते हैं मैं कोई आम गिदागर थोड़ी हूँ जिसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला और उसने दरवाजा छोड़ दिया। मेरे अल्फाज में मौला की रिवायत का मफहूम, मौला फरमाते हैं मैं ऐसा गिदागर हूँ जो उस वक्त तक दरवाजा बजाऊंगा जब तक दरवाजा खोल नहीं दिया जाए। तवस्सुल मांगे अल्लाह से, हम अल्लाह से नहीं मांगे कहाँ जाएंगे। वो बचपन में कुनाजात पढ़ी जाती थी कभी घर में, खाली हाथों को लेकर किधर जाऊंगी, ताने देगा जमाना जिधर जाऊंगी, वरना ये कह के चौखट पे मर जाऊंगी, बेतरफ मेरे आका मुझे भीग दे। आए हैं हम तो लेने के लिए आए हैं, हमारे पास जरिए मुतहर नहीं है, कब्रें मुतहर नहीं है, शबीहे तो बहुत सारे हैं। और यकीन करें ये होली प्लेसेस ना हो तो शायद इंसान फ्रस्ट्रेशन से मर जाए। आप जाते हैं किसी ऐसी इमाम बारगाह में, थोड़ी देर शबीहे शबीहे जरिए है, यकीनी सी बात है अंदर सैयदुल शुहदा ने, अंदर अबुल फजल अब्बास ने, लेकिन एक एहसास है ये जगह। अच्छा बाज़ वक़्त वहां पर वो नूरानियत और वो मानवियत भी है, वो नूरानियत और वो मानवियत भी है। आ गए बहजत से किसने पूछा आप मस्जिद जमकरान के बारे में क्या कहते हैं, इतने लोग कहते हैं यहाँ इमाम से मुलाकात हुई, यहाँ ये हुआ यहाँ हुआ, सिर्फ एक जुमला कभी नहीं बुलाया जा सकता। उस मर्जे फकीदुल मिसाल के उस जुमले को फरमाया बुए पिराह ने यूसुफ देखा, यूसुफ के पिराहन की खुशबू को हजरत याकूब ने कब महसूस किया था, जब बेटे दाखिल हुए थे, कहा बुहे पिराहन है यूसुफ, मुझे यहाँ से इमाम की खुशबू आती, मुझे नहीं कुछ भी पता। पांचवें इमाम जब बीमार होते थे अपने आप को हुजरे शहजादी में पहुंचाते थे, यामे फातिमिया करीब है बल्कि एक्सपेक्टेड यही है कि कल इंशाल्लाह पैदा हो जाएगी, अपने आप को शहजादी के हुजरे में पहुंचाते थे, अपने आप को बीवी के हुजरे की दीवारों से मस्त करते। सिर्फ एक मकसद है पांचवें इमाम के पेश नजर परवरदिगार इस शहजादी के सदके क्या मकाम होगा फातिमा का, फातिमा का मकाम ऐसा बकौल आ गए वहीद खुरासानी के अयाम फातिमिया की तकरीर में एक जगह कहते हैं आपने कभी सोचा नूह 2500 साल के साथ वो काम नहीं कर पाए जो सिद्दीका कुबरा ने 18 साल के सिन में कर दिखाया, जहमतें मुशक्कतें सब असाब सुफा का ख्याल। अमीर मोमिन कितनी बड़ी मुआवन थी कि अमीर मोमिन शहजादी की शहादत के बाद अपने आप को इतना तन्हा महसूस करते हैं। मरहूम मजलिसी ने जिस मरसिए को नकल किया जो अमीर मोमिन ने शहजादी की कब्र पर कहा है और फिर हातिफ की आवाज़ सुनी, लेकिन सिर्फ दो जुमले तबर्रुकन, क्योंकि आप मोमिनात का इस्तेमा है और हमें कुछ दुआओं के लिए मुझसे कहा गया है, तबर्रुकन सिर्फ दो जुमले मसाइल, ट्रेडिशनल तरीके से मसाइब भी नहीं पढ़ूंगी। कभी आपने सोचा शहजादी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, रहमत पिदर, इतनी साबरा बेटी है, इतनी साबरा बेटी है कि मुझे कभी समझ में नहीं आता कि क्या सिर्फ बाप का सर से उछलाना शहजादी को इस तरह से तोड़ गया। विलायत की कसमापुर से इमाम वक्त की ये मजलूमियत के मदीने से होकर आई है और मेरे मोमिन से कहते हैं यार मैंने देखा लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला कहते हैं फातिमा मैं सलाम करता हूँ मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। वो सिद्दीका कुबरा आखिरी दिन आए शहादत से पहले के, बच्चों को नहलाया धुलाया गेसू सवार, बहुत अजीब सा रिश्ता है माँ का और बच्चों का, स्पेशली जब बच्चे छोटे हों। कभी कभी आपने देखा ना किसी मरहूमा के जनाजे पर पता चले छोटे छोटे बच्चे छोड़ के मर गए तो इंसान घर तक दिल अफसुरदा रहते हैं, बच्चे माँ के बाद किस तरह से रहेंगे। शायद शायद ये जुबान हाल है, जुबान हाल नहीं है, लेकिन शायद जुबान हाल से मेरा दिल कहता है शहजादी के दर्दों का भी सबसे बड़ा दर्द यही हो मेरे बच्चे बहुत छोटे माँ के बगैर कैसे रहेंगे। और वो वसीयत है जो मेरे मोमिन को वसाए सबा के नाम से की है। मगर मजलिसी ने नकल की, आगे इब्राहिम आयती ने नकल की, बुजुर्गान ने नकल की, हमारे स्कॉलर्स ने नकल की। उन वसीयतों में तीसरा या चौथा जुमला भी यही है कि या अली मेरे अबुल हसन, मेरी शहादत के बाद आप शादी कर लेंगे, घर के निज़ाम के लिए मजबूर हैं कि एक औरत घर में। पहले तो वसीयत करती है मेरी शहादत के बाद इमामा बिनते अबुल आस से शादी कीजिएगा, उसने बेमादरी का दुख सहा है, वो मेरे बच्चों के साथ बहुत मेहरबान है, मेरे बच्चों से हिले हुए। फिर फरमाती हैं कि मेरे जब शादी करें तो एक रात अपनी बीवी के साथ, एक रात मेरे बच्चों के साथ सोइए, मेरे बच्चे बहुत कम से हैं, खता करें तो दरगुजर कीजिए। यहाँ पर हमेशा एक लम्हे के लिए मैं रुकती हूँ और सोचती हूँ, शहजादी आपकी रूह की खिदमत में एक जुमला अर्ज करूँ। सामने जमाने का आदिल तरीन इंसान है, मदीने के हर यतीम के सर पर हाथ रखने वाला है। आप मेरे मोमिनी से ताकीद कर रही हैं कि यानी मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा? शायद शहजादी पलट कर कहें तो हम क्या जानो माँ का दिल क्या होता है। ये रोएंगे मैं कब्र में तड़प जाऊंगी, ये रोएंगे मेरा दिल जख्मों से चूर हो जाएगा। और बीवी की मोहब्बत साबित कर दिया बीवी ने, हुजूम अला बैत नबी की रिवायत की रूह से जब गुस्ल कफन दे दिया, बच्चों से कहा बच्चों आकर अब माँ का आखिरी दीदार करो। अब कयामत के मैदान में माँ नजर आई। कितना सख्त जुमला है, कभी कभी मैं सोचती हूँ जुमले में मौला का कैसा कब होगा। आप चश्मे तसव्वुर से सिर्फ आंखें बंद कर एक लम्हे के लिए सोचिए, मदीने का एक घर है जहाँ चार मासूम बच्चे घुट घुट के माँ की शहादत पे रो रहे हैं। मेरे मौनी ने देखा हसन है मुझसे आगे बढ़े, शहजादियाँ आगे बढ़ी, हुसैन दिल्ली से हुजरा में खड़े आगे कदम नहीं बढ़ाते। कहा बेटा अब आकर देख लो, अब माँ फिर कयामत के मैदान में नजर आएगी। कहा बाबा जब यहाँ पहुंचता था माँ हाथों को फैला देती, हुसैन आ जा बाबा, माँ से कौन एक मतलब अपने हुसैन को आवाज। उलमा मेंबर कहते हैं मेरे मौनी ने कहा हुसैन अब माँ पुकारने के काबिल नहीं रहे। कहा अम्मा हुसैन की कसम अपने हुसैन को आवाज तो दो। मैंने गुफ्तगु खत्म कर दी, सिर्फ एक जुमला शहजादी की रूह से मुखातिब होकर, शहजादी बेटा कदो कामत के साथ खड़ा है, गुर्बत का नाम लिया बंदे कफन तोड़ डाले, कल जब ये पुश्त जुलजना से जमीने करबला पे गिरेगा। तो शायद शहजादी पलट कर कह दे तुम क्या जानो, ये माँ वहां पे भी आंचल को फैला है बैठी थी, आ जा उसे ना आ जा, ये माँ तेरा अब तेरा मख्तल साफ करके अपने आंचल को फैलाए, अपनी आगोश को खोले बैठी है। ए हुसैन पुश्ते फरस से जमीने करबला पर नहीं, फातिमा जहरा की आगोश में गिर जा। मसयालमुल्लजी नजलम वयामन कलबिल जन कलबूल تعجیل فرما۔ ایک مومنہ نے روزگار کے لیے کہا ہے التماس دعائے خصوصی کا، پروردگار اس مومنہ کے ساتھ جتنے بھی مومنات پریشان حال ہیں عمومیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ جو اس وقت یہاں اس درس میں موجود ہیں، ان سب کو وسیع و حلال رزق کی نعمت سے مالا مال فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اور خصوص ہماری وہ بہنیں جو بچوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں، امیر المومنین اور شہزادی کے صدقے میں، ان کے بچوں کے جلد از جلد اس شادی کے مسئلے کو مشکل کو آسان فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، اور ان مومنین اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا جو سانحہ ہوا ہے ایئر کریش کا، پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ مجھے بھی ایک مومنہ نے اسپیشلی زمان سے دعا کا کہا ہے، ان کے ہسبینڈ کی کچھ صحت کا پرابلم ہے، پروردگار عالم حق محمد وال محمد شہزادی کے صدقے میں کائنات رزق کھاتی ہے، شہزادی کے صدقے میں انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پروردگارہ صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے میں اس مومنہ کی اور تمام مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔
اللجن يا صاحب السماء اللجن.